சித்தம் சுத்தம் பணிமியா ஜிணிந்து வர்ணீமி சந்து மக்கலங்கம் குணரயண பூசணுதயம் ஜீவஸ் பருவணம் உச்சம். சித்தத்வ ஔர் சுத்தத்வ கு பிராப்த பகவான் நேமிநாத் கே சரண கமலோ மே நமன் கர்கே ஆச்சார்ய ஸ்ரீ நேமிச்சந்திர சித்தாந்த சக்கரவர்த்தி நே சம்சாரி ஜீவ் கி ஆத்மா கோ நிர்சம்சாரி ஜீவோ கி 20 பிரரூபணாயே கஹனே கா எக் சங்கல்ப கியா ஔர் உஸ்கா ஹி நாம் தியா கோமட் சார் ஜீவ் காண்ட. கோமட் சார் கா மத்லப் க்யா ரஹா கி சாமுன் ராய் ஜினோனே கோமடேஸ்வர் கி பிரதிமா பனாயி உன்கா தூசரா நாம் ஹோ கயா தா கோமட். ஔர் பாஹுபலி பகவான் கோ பனானே கி காரண் கோமடேஸ்வர் வோ கஹலாய பகவான் கி கோமட் கே ஈஸ்வர். தோ கோமடேஸ்வர் ஹுயி ஔர் நேமிச்சந்திர சித்தாந்த சக்கரவர்த்தி நே சட் கண்டாகம் ஆதி கிரந்தோ கா சார் உன்னி அப்படி சாமுண்டராய் சிஷ்ய கே பிரார்த்தனா பர் உஸ்கே சார் கோ ரச்சனே கே லியே ஜோ சங்கல்ப லியா தோ தோ கிரந்தோ கி ரச்சனா கி உன்னோனே கோமட் சார் ஜீவ் காண்ட ஔர் கோமட் சார் கர்ம காண்ட. தோ ஜீவ் காண்ட கே அந்தர் உன்னோனே 20 பிரருப்ணாவோ கே மாத்யம் சே ஜீவ் திரவ்ய கா வர்ணன் கர்னே கி பாத் கஹி ஹை. குண ஜீவா பஜ்ஜத்தி பாணா சன்னாய மக்னாவோ யா உவ ஓகோ விய கம்சோ விசம் து பருவணா பணிதா. குணஸ்தான் ஜீவ் சமாஸ் பர்யாப்தி பிராண சங்யா 14 மார்கணாய் தோ 14 5 19 ஹோ கே ஔர் ஏக் உபயோக. இஸ் பிரகார் சே 20 பிரருப்ணாவோ கா வர்ணன் கியா ஹை. உன்மே ஹம் ஆஜ்கல் நவமி பிரருப்ணா பர் சல் ரஹே ஹை. ஆப்கோ தியான் தேனா ஹை கி ஆப்கோ 87 நம்பர் கி காதா தக் பரீக்ஷா தேனா ஹை 5 மார்ச் கோ. 5 மார்ச் கி தாரீக் நிஷ்சித் ஹுயி ஹை ஜப் தின் மே 3:30 பஜே சே ஹி ஆப் பகவான் ரிஷப்தேவ் ஜூம் சேனல் பர் உபஸ்தித் ஹோகர் ஔர் வோ பரீட்சா தேங்கே ஜிஸ்கா பேப்பர் ஜூம் சேனல் கே சேட் பாக்ஸ் மே டிஸ்ப்ளே கியா ஜாயேகா. ஜெசே ஏக் பரீட்சா ஆப் தே சுகே ஹை அப் ஆப்கோ 55 காதாவோ கி பரீட்சா தேனா ஹை. தோ ஆஜ் 82 நம்பர் கி காதா ஹை யானி யோக் மார்க்னா கே அந்தர் சல் ரஹே ஹை அந்திம் காதா ஹை. இஸ்மே ஆப்னே யோக் கே 15 பேத் ஜான் லியே சம்ஜே சஸ்தி. யோக் கே 15 பேத் ஹோதே ஹை 4 மனோயோக் கே 4 வச்சன் யோக் கே ஔர் 7 காய யோக் கே. 4 மனோயோக் கோன் சே ஹை சத்ய மனோயோக் அசத்ய மனோயோக் உபய மனோயோக் ஔர் அனுபய மனோயோக். சத்ய வச்சன் யோக் அசத்ய வச்சன் யோக் உபய வச்சன் யோக் ஔர் அனுபய வச்சன் யோக் ஔர் 7 காய யோக் ஹை. காய மத்லப் சரீர் 7 பிரகார் கே சரீர் கா வர்ணன் கியா ஹை. ஔதாரிக் காய யோக் ஔதாரிக் மிஸ்ர காய யோக் வைக்ரியக் காய யோக் வைக்ரியக் மிஸ்ர காய யோக் ஆஹாரக் காய யோக் ஆஹாரக் மிஸ்ர காய யோக் ஔர் கார்மாண் காய யோக். தோ 7 காய யோக் ஹுயே ஔர் 4 மன் யோக் 4 வச்சன் யோக் மில் கர்கே கித்னே 15 யோக் ஹோ கயே. சப்கே பாஸ் மன் வச்சன் ஔர் காய யே தீனோ சீஜே ஹை. மன் சே சோச்தே ஹை வச்சனோ சே போல்தே ஹை ஔர் காய கோ தாரண கர்தே ஹை. அப் 82 நம்பர் கி காதா சே 82 நம்பர் கி காதா ஹை உஸ்மே பதாதே ஹை ஷரீர் மே கர்ம ஔர் நோ கர்ம கா விபாக் கிஸ் பிரகார் சே ஹோதா ஹை.
ஓராலிய வே குவ்யா
ஆஹாரய தேஜணாம் கம்முதை
ஆஹாரய தேஜணாம் கம்முதை
சௌணோ கம்ம சரீரா
சௌணோ கம்ம சரீரா
கம்மே வய ஹோதிகம் மையம்
கம்மே வய ஹோதிகம் மையம்.
சாமூஹிக காதா படியே. ஓராலிய
வே குவ்யா ஆஹாரய தேஜணாம் கம்முதை சௌணோ கம்ம சரீரா கம்மே வய ஹோதிகம் மையம்.
ஔராலிக வேகூர்விக ஆஹாரக் தேஜோ நாம கர்மோதை சதுர்ணோ கர்ம சரீராணி कर्मयु च भवति कारणम। यानी योग मार्ग के सार रूप में जानना है। औदारिक बेगुव्य माने वैक्रियक शरीर, आहारक तेजस और नाम कमुदय माने नाम कर्म के उदय से होने वाले चारों शरीर को नौ कर्म कहते हैं। कर्म और नौ कर्म दो चीजें हैं ना, तो कर्म से जिसमें कमी होती है, ईषत कर्म को धारण करने वाले ये नौ कर्म यानी शरीर की रचना करने वाला नौ कर्म है। और कारमांड शरीर नाम कर्म के उदय से, कारमांड शरीर नाम कर्म के उदय से मतलब कर्मों का समूह ही कारमांड कहलाता है, कारमांड शरीर। तो संसारी जीव, हर जीव कर्म से सहित है, कोई भी जीव कर्म से रहित नहीं है। जो कर्म से रहित है वो सिद्ध कहलाते हैं। तो कर्म से रहित होने की मार्ग पर चलने वाले मोक्ष मार्गी संतों के साथ भी शरीर सबके साथ अरिहंत अवस्था तक भी लगा है। तो कारमांड शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों के समूह को कारमांड शरीर कहते हैं। ये कारमांड शरीर सबके साथ रहता है, कर्मों का समूह सबके साथ है। तो कहा गया काय, काय माने शरीर के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को काय योग कहते हैं। क्या हमें स्थूल शरीर तो दिखता है, लेकिन इस शरीर के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन माने हलन चलन होता है उसी को काय योग कहा गया है। काय और योग इन दो चीजों को मिलाकर के काय योग बना। तो आप जानना है कि शरीर होते हैं पांच, शरीर कितने होते हैं पांच, कौन कौन से, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कारमान। ये पांच प्रकार के शरीर होते हैं। हमारा और आपका कौन सा शरीर है, औदारिक शरीर है। देव और नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर होता है, और त्रियंचों का शरीर औदारिक होता है, और आहारक शरीर केवल जो मुनिराज हैं जिनको आहारक रिद्धि होती है उनमें से ही किसी किसी मुनि को विशेष कारण से आहारक शरीर प्रकट होता है। तो इसमें बताया कि शरीर पांच हैं और वे दो भागों में विभक्त हैं, कर्म और नो कर्म। अभी बता दिया ना कि कर्म आठ कर्मों के समूह को कारमांड शरीर कहते हैं। तो तेजस शरीर योग में निमित्त नहीं माना है। तेजस का मतलब है केवल शरीर के अंदर कांति को देना, चाहे गोरा है काला है किसी भी रंग का है, लेकिन उसकी अपनी कुछ प्रभाव होती है। तो हर शरीर के साथ में ये तेज लगा होता है उसी को तेजस कहते हैं। तो तेजस शरीर योग में निमित्त नहीं माना है। और नो कर्म में नो शब्द का अर्थ है ईषत, और विरुद्ध भी होता है नो। तो ईषत अर्थ में औदारिक आदि कर्मों के सहायक होने से ईषत कर्म या नो कर्म है, अथवा गुणों का साक्षात घात करने और आत्मा को पराधीन बनाने में कर्म के समान काम नहीं करते, इसलिए ये नो कर्म है। कर्म और नो कर्म में यही अंतर है कि ये पूरा कर्म के समान काम नहीं करते, कर्म बिल्कुल बंधन में बांध करके इस जीव को जेल में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से आपको कर्म और नो कर्म की परिभाषा बताते हुए इस योग मारना का समापन किया है आचार्य देव ने। और अंत में आपको ये जानना है कि इन योगों से रहित कौन होते हैं, अयोगी जिन, जो योग से रहित अनुपम और अनंत बल से युक्त होते हैं, और 13वें गुणस्थान के बाद 14वें गुणस्थान जिसका नाम है अयोग केवली, उसमें कितने समय के लिए, केवल अंतर मुहूर्त के लिए जाते हैं। अ ई उ री ली इन पांच वर्णों का जितनी देर में उच्चारण होता है बस उतने समय तक वो उस गुणस्थान में रहते हैं, और एक परम शुक्ल ध्यान की अग्नि से कर्मों को जला करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। ये कर्म सिद्धांत आपको जानना है कि इतने इन ह्रस्व अक्षर के उच्चारण मात्र काल में सिद्ध होने वाले अयोगी परमात्मा होते हैं, जिन्हें निकल परमात्मा सिद्ध भगवान कहते हैं, उनको बारंबार नमन करते हुए इस योग मार्गना को समापन किया जाता है। और उसके बाद हम आते हैं वेद मार्गना में। ये 10वां अधिकार है अर्थात 10वीं प्ररूपणा है। और अब हमारे बाकी रह गए हैं कितने गाथाएं, 5 गाथाएं बाकी हैं। 83 नंबर की गाथा पर आते हैं। पुरिसिच्च संडवेदो दयेन पुरिसिच्च संडो भावे,
पुरिसिच्च संडवेदो दयेन पुरिसिच्च संडो भावे,
नामो दयेन दवे,
नामो दयेन दवे,
पायेन समा कहिं विषमा,
पायेन समा कहिं विषमा।
सामूहिक गाथा पढ़िए।
पुरिसिच्च संडवेदो दयेन पुरिसिच्च संडो भावे, नामो दयेन सवे, पायेन समा कहिं विषमा।
पुरुष स्त्री संडवेदो दयेन पुरुष स्त्री संडा भावे, नामो दयेन द्रव्ये, प्रायेण समा क्वचित विषमा। बहुत ही सरल प्रकरण है वेद नामकरण का। उदय कहते हैं कि पुरुष सिच्ची माने स्त्री, संड माने नपुंसक, वेद कर्म के उदय से भाव स्त्री, भाव पुरुष और भाव नपुंसक होता है। यानी जब पुरुष वेद का या स्त्री वेद का या नपुंसक वेद का उदय होता है तो ये भाव स्त्री, भाव पुरुष, भाव नपुंसक रूप में इसकी प्रकटता होती है। और नाम कर्म के उदय से द्रव्य पुरुष, द्रव्य स्त्री और द्रव्य नपुंसक होता है। तो वेद को दो भागों में विभक्त किया, भाव और द्रव्य। तो कहीं पर द्रव्य जो वेद होता है वही भाव वेद होता है। पायण समम समा कहीं विषमा, कहीं एक समान होते हैं और कहीं असमान होते हैं। किसी के द्रव्य से पुरुष वेद का उदय है और भाव से उसके स्त्री वेद का भी उदय हो सकता है। तो ये धवला आदि ग्रंथों से भी आपको जानना है कि द्रव्य से माने ऊपर से जो पुरुष हैं, अगर उनके भाव से स्त्री वेद भी है तो भी वो मोक्ष जा सकते हैं। इसकी सूक्ष्मता को आपको जानना है कि भाव वाला वेद जो है वो कुछ बिगाड़ नहीं करता है, लेकिन द्रव्य से जो पुरुष वेदी है मोक्ष वही जा सकते हैं। कोई द्रव्य से स्त्री वेदी है, भाव से उनके पुरुष वेद भी हो सकता है, लेकिन द्रव्य वेद इतना मायने रखता है कि द्रव्य से स्त्री वेदी चाहे भाव से पुरुष वेद हो वो मोक्ष को नहीं जा सकते। तो इसमें दो चीजें आ गई, एक तो वेद कर्म का उदय और दूसरा नाम कर्म का उदय। तो नाम कर्म से शरीर की रचना होती है, शरीर के आकार बनते हैं, समझे ना। जिसको कहते हैं कि ब्रह्मा जी बनाते हैं, हमारे यहाँ नाम कर्म ही, जैन धर्म में नाम कर्म ही शरीर की रचना, सृष्टि की रचना करता है। तो नाम कर्म के उदय से शरीर के आकार बनते हैं और वेद कर्म के उदय से भावों में उस प्रकार का वेद होता है। तो प्रायः समान ही होते हैं, जो द्रव्य वेद वो भाव वेद, जो भाव वेद वो द्रव्य वेद, लेकिन कहीं कहीं विषम भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि वेद नाम नौ कषाय के उदय से जीव के भाव वेद होता है और निर्माण नाम कर्म सहित अंगोपांग नाम कर्म के उदय से द्रव्य वेद होता है। अंगोपांग से ये हाथ पैर नाखून आंख कान सब चीजें अंगोपांग नाम कर्म के उदय से बनते हैं। ये दोनों ही वेद प्रायः करके समान ही होते हैं, अर्थात जो भाव वेद वही द्रव्य वेद और जो द्रव्य वेद वही भाव वेद होता है। परंतु कहीं कहीं विषमता भी हो जाती है, अर्थात भाव वेद दूसरा होता है और द्रव्य वेद दूसरा हो जाता है। ये विषमता कहाँ कहाँ होती है? ये विषमता देव गति और नरक गति में तो सर्वथा नहीं होती। जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद होता है, लेकिन मनुष्य और तिर्यंचों में जो भोग भूमिया है उनमें भी ये विषमता नहीं होती। केवल कर्म भूमिया मनुष्यों में और तिर्यंचों में वेद की विषमता देखी जाती है। इसी को किसी किसी ने एकांत से ग्रहण कर लिया या इसकी सूक्ष्मता को नहीं समझ पाए, तो कुछ लोगों ने स्त्री वेद से भी मुक्ति को मान लिया। कहीं जानते होंगे ना कि मल्ली नाथ को मल्ली कुमारी मान लिया, तो उन्होंने इस बात को नहीं जाना। और धौला ग्रंथ के अंदर जगह जगह इसका वर्णन है कि भाव वेद कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन द्रव्य वेद पुरुष का ही होना चाहिए, तभी मोक्ष की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार से हमने आपको वेद मार्गना का भी शुभारंभ कराया है और अब केवल 4 गाथाएं रह गई हैं, जिनको हम 1-2 दिन में ही पूर्ण करा करके और आपके कोर्स को पूरा कराएंगे। तब आप 5 मार्च को परीक्षा देने के लिए तैयार रहेंगे। ये स्वाध्याय आज का गोमट सात जीव कांड का परिपूर्ण होता है।